ये फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, स्कंद 7 अध्याय 7 श्लोक संख्या 29 तत्रोपाय सहस्रनामयम् भगवतो दोदित यदीश्वरे भगवती यथा अयर्जस्रारती तत् शब्दार्थ यत्र उस संबंध में भवबंधन से छूटने में उपाय विधियों में सहस्त्राणाम हजारों अयम यह भगवता उदित भगवान द्वारा प्रदत्त यत जो ईश्वरे ईश्वर में भगवती भगवान में यथा जिस प्रकार यह जिसके द्वारा अजंसा तेजी से रति प्रेम तथा स्नेह से आसक्ति। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। भौतिक जीवन से छूटने के लिए जितनी विधियां संतुत हैं उनमें से वह एक जिसे स्वयं भगवान ने बताया है और स्वीकार किया है उसे सभी तरह से पूर्ण समझना चाहिए। वह विधि है कर्तव्य का संपन्न किया जाना जिससे परमेश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। आप लोग हमारे साथ दोहराइए फिर से। भौतिक जीवन से छूटने के लिए जितनी विधियां संतुत हैं उनमें से वह एक जिसे स्वयं भगवान ने बताया है और स्वीकार किया है उसे सभी तरह से पूर्ण समझना चाहिए। वह विधि है कर्तव्य का संपन्न किया जाना जिससे परमेश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तात्पर्य उन अनेक योग विधियों में से जो मनुष्य को भव कलमश के बंधन से ऊपर उठाती है उस एक विधि को जिसे भगवान ने संतुत किया है सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। यह विधि भगवत गीता में स्पष्टतः बतलाई गई है जहाँ भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण ग्रहण करें। यह विधि सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि भगवान आश्वस्त करते हैं अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत, चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्योंकि स्वयं भगवान आश्वस्त कर रहे हैं क्योंकि वे अपने भक्त की रखवाली करेंगे और उसे पाप कर्मों के फलों से बचा लेंगे। भव बंधन पाप कर्मों का ही फल है। चूंकि भगवान चिंता करने की कोई बात नहीं है, चूंकि भगवान आश्वस्त कर रहे हैं कि वे सकाम कर्मों के फलों को दूर कर देंगे, अतएव चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसलिए आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को समझने तथा भक्ति में लगाने की विधि सर्वोत्तम है। संपूर्ण वैदिक कार्यक्रम इसी सिद्धांत पर टिका है और मनुष्य इसे वेदों में बताई गई विधि से समझ सकता है। यस्य देवे परा भक्तिरर्था देवे तथा गुरो तस्य ते कथिता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मन। जो महापुरुष भगवान तथा गुरु दोनों पर अव्यक्त श्रद्धा रखते हैं, उन्हें वैदिक ज्ञान का सारा आशय स्वतः प्रकट हो जाता है। स्वातेश्वर उपनिषद 6:23। मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर के प्रतिनिधि स्वरूप शुद्ध भक्त को अपना गुरु मान ले और उसे भगवान के ही समान आदर प्रदान करे। यही सफलता का रहस्य है। जो इस विधि को ग्रहण करता है उसे पूरी विधि ज्ञात हो जाती है। इस श्लोक में ये रज्जसा रति शब्द यह बताते हैं कि गुरु की सेवा करने तथा उसकी शरण ग्रहण करने से मनुष्य को भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति करने से वह धीरे धीरे भगवान में आसक्त हो जाता है। भगवान के प्रति इस आसक्ति के कारण वह भगवान को समझ सकता है। दूसरे शब्दों में वह यह समझ सकता है कि भगवान की स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है और हमारा संबंध क्या है। भक्ति योग द्वारा यह सब सरलता से समझा जा सकता है। ज्यों ही मनुष्य भक्ति योग पद को प्राप्त होता है कि उसके कष्ट का मूल कारण उसके भवबंधन नष्ट हो जाते हैं और उसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई है जो सफलता के रहस्य को बताता है। ओम अज्ञान तिमिरांध्यस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथ विन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखावान्तिश्च। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरुदीनतारिणं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवभ्य नमो नमः। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के 7वें अध्याय से जो ये 29 नंबर श्लोक पर चर्चा की आज सेवा दी गई है और हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ये अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि श्रीमद् भागवत संपूर्ण अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है लेकिन इस अध्याय में कुछ विशेष बातें हैं जो आप लोग पिछले कुछ समय से लगातार सुनते आ रहे हैं। इसमें विशेष क्या है, बहुत विशेष क्या है? विशेष यह है कि प्रहलाद महाराज जो है अपने सहपाठियों को अपने मित्रों को कृष्ण भावनामृत के बारे में उपदेश दे रहे हैं और कृष्ण भावनामृत हमारी संस्था का नाम है, संघ है, जिसमें हम भक्ति योग का यानी भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये हमें बहुत गहराई से इस बात को समझना है कि प्रहलाद महाराज भक्ति यानी कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं और यह प्रचार हम लोग भी कर रहे हैं। कुछ लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कुछ लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं, कुछ लोग तरह तरह से अपने सामर्थ्य के अनुसार जिसकी जैसी सेवा है, आप देखें तो अनकाउंटेबल और अनगिनत सेवा है। जिसको गिनना भी मुश्किल है, इतनी सेवाएं हैं। और बहुत सी ऐसी सेवाएं हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, हमारी सोच के भी बाहर है। क्योंकि इन 84 लाख योनियों में 4 लाख मनुष्यों की, और 4 लाख मनुष्यों में जो 8 प्रकार के मनुष्य भगवान ने बताए हैं, उसमें 4 प्रकार के आस्तिक जो लोग हैं, जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, उनके बारे में विशेष तरह से कहा गया है कि ये लोग सभी ब्रह्म तत्व हैं। ब्रह्म तत्व कैसे हैं कि ये सब ब्रह्म की यानी ब्रह्मा जी के अंदर समाये हुए 84 लाख योनियां हैं, पर 4 लाख मनुष्य ऐसे हैं जिनकी विकसित योनि है, यानी उनका जो दिमाग है, उनका जो चेतना है वो विकसित है। और प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत संघ स्थापित करके इन सभी लोगों को आह्वान किया कि आप सब लोग इस भावनामृत से जुड़ करके कृष्ण भावना में रह करके भक्ति का प्रचार करिए। तो प्रचार सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारी भक्ति का। और प्रचार ऐसा नहीं कि मैं जैसे व्यासांश में बैठ करके कथा कर रहा हूँ, या कोई व्यक्ति प्रसाद कुकिंग कर रहा है, या कोई व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, या कोई व्यक्ति कंस्ट्रक्शन कर रहा है। इस दुनिया की, इस भौतिक संसार की और प्लस आध्यात्मिक संसार की कोई भी ऐसा कर्म नहीं है, ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है जो हर कोई न कर रहा हो। लेकिन फर्क इतना है कि ये सारा कार्य हम कृष्णा कॉन्शियस यानी कृष्ण के या कृष्णमय होकर के कृष्ण के लिए कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वैष्णवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम धोती कुर्ता पहन करके और माला थैली लेकर के वैष्णव तिलक लगा करके मंदिर आते हैं, या हम कहीं भी चलते फिरते हैं, तो चाहे माताएं हों या प्रभु जी हों, तो हर कोई जो बाहर के लोग हैं जो ये कार्य नहीं करते हैं वो बहुत आश्चर्य से देखते हैं। आप कुछ भी न बोलें, कोई भी सेवा न करें, कुछ भी न करें, लेकिन यदि आप सिंपल तरीके से वैष्णव तरीके से तैयार होकर के और अच्छी तरह से जो वैष्णव की वेशभूषा है उस रूप में तैयार होकर के तिलक लगा करके भगवान का नाम जप करते हुए जब चलते हैं, तो आपके विषय में बाहर के लोग बहुत आश्चर्य से देखते हैं कि अरे ये व्यक्ति क्या कर रहा है। तो ये भी एक प्रचार का अंग है। तो हम लोगों को इस पे बहुत सूक्ष्मता से ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो आचार है, व्यवहार है, वो बहुत ही सादगी से, सरलता से और दूसरों को आकर्षित करने वाला होना चाहिए। और आकर्षित करने वाला क्यों होना चाहिए कि उस व्यक्ति को हमें देखने के बाद जो है भगवान का स्मरण हो, कृष्ण का स्मरण हो। जब उस व्यक्ति को कृष्ण का स्मरण होगा तो आपकी सारी चीज़ें भक्तिमय हो गई और आप स्वयं भी डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में स्वयं आप कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। यही बात प्रहलाद महाराज प्रचार के माध्यम से आज कह रहे हैं कि ये प्रहलाद महाराज आप पूरे भागवत में देखेंगे कि सप्तम स्कंद में प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा तात्पर्य और बहुत कुछ श्लोक और सारा स्कंद ही इसके ऊपर लिखा है। इसी बात को बल दे करके कि प्रहलाद महाराज स्वयं प्रचार करके हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि हम सबको प्रचारक बनना चाहिए। और आज इस संसार में और खास करके भौतिक संसार में आप देखेंगे कि जो उपद्रव होते हैं, जो कला होते हैं, जो ईर्ष्या होती है, जो द्वेष होता है, उन सब के कारण आप देखेंगे कि इसके पीछे अज्ञान है। और अज्ञान कैसा है कि उनको ये पता नहीं है कि हम जो है परम परमात्मा यानी परम जो भगवान श्री कृष्ण है उनके अंश हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को ये अंतरात्मा से ज्ञान हो जाए किसी भी प्रकार से कि हम परम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, और सामने वाले व्यक्ति को यदि हम समझ लें कि ये भी, ये जीव जो है, ये भी जो मनुष्य है या वैष्णव है या वैष्णवी है, ये भी भगवान का अंश है, अगर उसको इस बात की अनुभूति अच्छी तरह से होती है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके मुख से एक भी गलत शब्द निकलेगा या कोई ईर्ष्या द्वेष अहंकार किसी प्रकार की भावना उसके अंदर आएगी, जैसा कि हम मेटेरियलिस्टिक या भौतिक लोगों के बीच में या सांसारिक लोगों के बीच में देखते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हम लोग कई बार अपने ज्ञान और विद्या विभूषण और ऊंची ऊंची सेवाएं करके बहुत छोटी छोटी बातों को हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं या छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। पर इन सब चीज़ों को कोई भी उस स्तर का व्यक्ति है भौतिक संसार का जो हमें बहुत क्लिनिकली ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, जब हम रास्ते में चलते हैं और लोगों से बात करते हैं तो देखता है कि अरे ये वैष्णव कैसे व्यवहार कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है और बहुत बड़ा प्रचार होता है। तो हम सभी वैष्णव को इस कथा के माध्यम से अपने आप में एक आदर्श वैष्णव के प्रति और जो अवैष्णव हैं उनके प्रति भी प्रस्तुत करना चाहिए। और सच में जो है, यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार गंभीरता से और गहराई से करता है तो आप उसी अनुपात में देखेंगे कि जो लोग अभी तक इस स्थिति में नहीं हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो धीरे धीरे इस संघ से जुड़ते हैं और वो भी कृष्ण के नाम का जप करना शुरू करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि खास करके जब हम लोग प्रचार कार्य के लिए इस तरह से निकलते हैं तो पहले तो लोग उसको निग्लेक्ट करते हैं, पहले वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अंदर अंदर उनकी आत्मा में वो चीज़ नहीं होती है। और इसके अंदर विशेष रूप से आप ये पाएंगे कि हमारे अंदर यदि वो शुद्धता है और थोड़ी सी शुद्धता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति वो प्रभावित होता है, क्योंकि वो व्यक्ति भी भगवान का ही अंश है। और इसके पिछले अध्यायों में आपने देखा कि हमारी दो अवस्था, खास करके जागृत अवस्था और सुप्त अवस्था के बारे में जो है डिस्कशन हुआ, फिर माया के अंदर हम कैसे सो रहे हैं और अध्यात्म में आने के बाद कैसे जगते हैं। और इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग स्वयं अपने आप को जरा एक बार पीछे थोड़ा जा करके, जब हम कृष्ण भावनामृत में नहीं थे, और सोचें और याद करें तो आप देखेंगे कि जब तक हम इस संघ से नहीं जुड़े थे तो हमें ये पता नहीं था कि कृष्ण भावना क्या है या कृष्ण है कौन। तो जब ये हमें नहीं पता था और प्रभुपाद जी आगे एडवांस स्थिति में आप चल करके इसका अध्ययन करते होंगे, आज सब लोग महसूस भी करते होंगे, जो लोग भक्त हैं, 16 माला जप करते हैं, उनको भी ये अच्छी तरह से पता होगा कि ये जो कार्य जो हम कर रहे हैं इस तरह से, ये भगवत प्रचार के लिए कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले, जब तक हम ये कोई कार्य नहीं करते हैं तो साधारण भाषा में कहते हैं कि आदमी एक जानवर है। तो जानवर है यानी हम लोग जानवर या पशु के लेवल पे होते हैं। जब तक हम भगवान से संबंध अपना नहीं जोड़ते हैं तो इस खास करके जो शूद्र की स्थिति है, शूद्र तो एटलीस्ट मनुष्य योनि में है, लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि कलयुग में शूद्र से भी नीचे यानी हम पशु योनि में यानी पशु के स्तर पे हैं। और पशु स्तर से जैसे ही हम भगवान के नाम का जप करते हैं और भगवान से अपना संपर्क स्थापित करते हैं तो एटलीस्ट हम मनुष्य योनि में आते हैं। और मनुष्य योनि में आने के बाद तब हमारे आगे के कार्यकलाप शुरू होते हैं। इससे पहले हम मनुष्य योनि में अपने आप को नहीं कह सकते, क्योंकि मनुष्य के मेन जो कार्य होते हैं या हर जीव के जो कार्य होते हैं वो आहार, निद्रा, भय और मैथुन। पूरे संपूर्ण जगत में आत्मा से लेकर के ब्रह्मलोक तक आप देखेंगे कि सृष्टि के आत्मा की स्थिति से लेकर के ब्रह्मा के सृजन तक जितने भी जीव हैं सभी ये चार कार्यों में व्यस्त हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। लेकिन इन सब चीज से हट करके एक है हरि नाम यानी हरे कृष्ण का महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जो व्यक्ति एक बार इस नाम को लेता है वो तुरंत जो है एटलीस्ट मनुष्य योनि में आ जाता है। और मनुष्य योनि में आने के बाद में जब हमारी पहली प्रथम दीक्षा होती है, हरि नाम दीक्षा होती है, और कुछ समय तक जब हम हरि नाम दीक्षा करते रहते हैं तो हम जब भक्ति के कार्यकलापों को गहराई से ग्रहण करते हैं तो उसके बाद हमारी ब्राह्मण दीक्षा होती है, यानी हम उसके बाद मनुष्य योनि से विप्र योनि यानी ब्राह्मण की योनि में आते हैं। इससे पहले हम उस स्तर पे भी नहीं होते। और उसके बाद जो तीसरा स्तर है वहाँ पर हम जो है वैष्णव की योनि में वैष्णव के रूप में आते हैं। वैष्णव के यानी वैष्णव का कार्यकलाप सिंपल ये है कि जो हरि नाम का जप करता है, जिसके जीवन में सिर्फ कृष्ण है, और वो व्यक्ति जिसने कृष्ण की शरण ग्रहण की है, प्रामाणिक गुरु की शरण की है, ग्रहण किया है, वो व्यक्ति जो है ब्राह्मण योग्य है और जो प्रचार कार्य करता है। तो प्रभुपाद जी ने इस तरीके से इसको कैटेगराइज करके बताया है कि किस प्रकार से जो है हमें इस कृष्ण भावनामृत संघ को और कृष्ण भावनामृत भावना को अपने जीवन में जो है हमें उतारना चाहिए और किसको किस तरह से समझना चाहिए। आज इसमें एक बहुत रहस्यपूर्ण बात एक ये है कि हम सभी लोग नित्य कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, भागवत की कथा सुनते हैं, लेकिन इसमें प्रभुपाद जी खास करके आगे हम बताएंगे कि श्लोक में कह रहे हैं कि जो है सुनने के बाद इसको हमें हृदय में लेना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी साहित्य हैं, जितने भी वेद पुराण हैं, इन सब के अंदर भगवान अनंत हैं। भगवान के गुण लीला स्वभाव कर्म जो कुछ भी है सब कुछ दिव्य हैं, और दिव्य जो है अनलिमिटेड है, इसको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं, और इन पुस्तकों में भी हम इसको पूरा नहीं कर सकते हैं अपने इस दिमाग से, क्योंकि शुरू में ही भगवत गीता के भूमिका में ही प्रभुपाद जी ने बताया है कि मनुष्य के अंदर मनुष्य योनि में जो भी व्यक्ति जन्म लिया है उसमें चार कमियां होती, चार त्रुटियां होती हैं। उन त्रुटियों की वजह से हम ये भगवत ज्ञान या दिव्य ज्ञान को पूरी तरह से प्रकाशित नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद जी ने अध्याय 3 के 35 नंबर श्लोक में यह लिखा है कि हमें हृदयेषु, इसको हृदय में उतारना चाहिए, हृदय में इसका चिंतन करना चाहिए, हृदय में इसका मनन करना चाहिए, तब इस ज्ञान का हमें लाभ मिलेगा और हम पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में रह करके 24 घंटे कृष्ण के बारे में चिंतन कर सकते हैं। आइए हम इस पे आगे देखते हैं कि प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं। प्रहलाद महाराज हालांकि 5-6 साल के बच्चे हैं और अपने ही इक्वल के जो बच्चे हैं, 5-6 साल के बच्चे हैं, सब उनके सहपाठी उनको ये प्रचार कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये उपदेश वेदों के माध्यम से और श्रीमद् भागवत, खास करके वैष्णव के लिए श्रीमद् भागवत है जिसके माध्यम से हम ग्रहण करते हैं। वेदों में आपने देखा है कि हर तरह का सारी व्याख्या है, भौतिक जगत में आनंद भी पाने की व्याख्या है, सुख से रहने की भी व्याख्या है। ऐसा नहीं कि खाली हम तपस्या ही करें जीवन भर, सारा सब कुछ वेदों में दिया हुआ है। तो जो भक्त नहीं होते हैं वो वेदों से उन चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करके नित्य जो है, और हम लोग भी जब तक कृष्ण भावनामृत में नहीं थे हमारी भी सोच कहीं न कहीं इसी प्रकार से थी। वो सोच कैसी थी कि आज सपोज उदाहरण के रूप में लें, यदि हम गरीब हैं तो हम जो है अमीर बनने की कोशिश करते हैं, और यदि हम राजा हैं तो हम सोचते हैं कि चलो अभी हम इंटायर प्लेनेट के राजा बनेंगे। इस तरीके से हमारे अंदर वो भावनाएं चलती रहती हैं, और खास करके गरीबी अवस्था में हम अपने को सुखपूर्वक या अपने इस अध्यात्म बुद्धि, इसके पहले बहुत सारा चर्चा हमने उन्होंने सुना है कि अध्यात्म बुद्धि यानी देह से हम शरीर को सुखमय कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में लगातार हमारा चिंतन चलता रहता है। और जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर के जब स्कूल जाता है और स्कूल जाने से जा करके आज तक जितनी भी शिक्षाएं हैं, वह जितने ज्ञान हैं, ये सारे ज्ञान और यहाँ तक कि वैदिक वेद का भी एक भाग ऐसा है जिसमें पूरा कर्म कांड सिखाया जाता है, और उसमें यही बताया जाता है कि जो है शरीर को हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन भक्तों से मैं आग्रहपूर्ण ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों की ये चिंतन करना चाहिए कि ये शरीर नश्वर है। इस संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जड़ तो जड़, चेतन तो चेतन, और जड़ में भी कोई ऐसी चीज नहीं, आज ये बिल्डिंग जैसी है कल ये बिल्डिंग ऐसी नहीं रहेगी, और जीव तो बहुत टेम्पररी है, और मनुष्य जीवन तो इतना थोड़ा है, इतना छोटा है कि इसमें हम कौन सी तपस्या करेंगे। लेकिन प्रभुपाद और गुरु महाराज ने और खास करके चैतन्य महाप्रभु ने इस धराधाम पर आ करके हमें इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान दिया और बताया। इससे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी भक्ति के विषय में और भक्ति से पहले जितने भी धार्मिक कृत्य हैं, धार्मिक कार्यक्रम हैं, उसमें जो योग पद्धति का वर्णन जगह जगह पे किया गया है, किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति योग के माध्यम से भगवान से जुड़ना चाहता है, और योग के तमाम अंग बताए गए हैं, जिसमें खास करके श्रीमद् भगवद गीता को यदि हम लें तो भगवद गीता में प्रभुपाद जी बताते हैं कि शुरू के जो 6 अध्याय हैं उसमें यही सब वर्णन है, और बाद में 6 अध्याय में बताया गया कि क्या करना है। लेकिन भक्ति और भक्ति योग के बारे में जो बीच के 6 अध्याय हैं, यानी 6 से 12 तक, उस अध्याय में खास करके हमें भक्ति किस प्रकार करनी है और उस भक्ति को भी शुद्ध रूप में परिणित करने के लिए, शुद्ध रूप से करने के लिए स्वयं भगवान प्रहलाद महाराज के माध्यम से, नारद जी के माध्यम से स्वयं इसी श्लोक में बहुत शॉर्टकट तरीके से, बहुत सुलभ तरीके से हमें बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं सुनिए। इसके जस्ट पिछले श्लोक में ही प्रभुपाद जी ने कोट किया है, योगी नामपि सर्वेषां भक्त मद्भक्तेनात्मना श्रद्धावान भजन्ते यो मा समय युक्तमो मत। समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक दिव्य प्रेमा भक्ति में मेरी पूजा करते हुए सदैव मुझ में लगा रहता है, वह मुझसे योग द्वारा घनिष्ठता पूर्वक जुड़ा रहता है और सबों में श्रेष्ठ है। अतएव जो व्यक्ति अपने हृदय में कृष्ण का चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। वह सर्वश्रेष्ठ योग प्रणाली का अभ्यास करके वह भौतिक दशा से मुक्त हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ योग प्रणाली क्या है? वो है कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावना में भक्ति का प्रशिक्षण लेना और उसको अपने जीवन में उतारना और उसका अभ्यास करना। तो इसके अनुवाद में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भौतिक जीवन से छूटने के लिए जितनी विधियां संतुत हैं, यानी विधियां बहुत सारी हैं, उनमें से वह जिसे स्वयं भगवान ने बताया है और स्वीकार किया है उसे सभी तरह से पूर्ण समझना चाहिए। यानी भगवान ने कौन सी विधि बताई और उसे संपूर्ण क्या है, वह विधि कर्तव्य का संपन्न किया जाना जिससे परमेश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। यानी श्रीमद् पूरे श्रीमद् भागवत का आशय यह है कि हम जो अपनी भक्ति का कार्य करें, चाहे वह किसी भी स्तर की भक्ति हो, किसी भी स्तर की सेवा हो, उससे हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। अब प्रेम जो शब्द है, आप देखेंगे कि एक साधारण लड़के लड़की का भी प्रेम होता है, पर वो प्रेम जो है बिल्कुल अलग है। ये वो लौकिक प्रेम है, ये अलौकिक है। अलौकिक यानी जिसके अंदर कोई गंदगी नहीं है, और इस प्रेम को भगवान के साथ जोड़ना है, क्योंकि इस प्रेम के प्रदाता स्वयं भगवान हैं। तो भगवान हमें इसमें स्वयं हमें इस बात का मार्गदर्शन कर रहे हैं कि हमें जो है किस प्रकार से यह भक्ति करनी चाहिए। जैसा कि बताए, योगी जितने भी योगी योग करते हैं, योग का अर्थ क्या होता है? योग का मतलब एक 1+1=2, दो हुआ, 1+1=2 होता है। लेकिन भक्ति में जो लोग ये शुद्ध भक्ति करते हैं वो 1+1=11 होता है, 11 होता है, 1+1=11। आप 0-0 कितने भी लगा दो, अगर एक नहीं है तो सब किसी का उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन एक के बाद 10, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, 10000 कुछ भी होता है, पर एक क्या है? भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना और उनसे अपना संबंध स्थापित करना, और उनके साथ संबंध स्थापित करके साथ जो अभी प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया कि हृदय से उसको हृदय में ग्रहण करना, हृदय में लेना और प्रेम पूर्वक करना। सेवा तो सभी करते हैं, एक सरकारी
नौकर भी जो है गवर्नमेंट की सेवा करता है, लोग तरह तरह से देखे, एक दुकानदार भी दुकानदार करके अपनी दुकान की सेवा करता है, एक मेडिकल स्टोर वाला भी दवाइयां बेचता है, पर प्रेममयी सेवा जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं हो और किसी तरह की मल नहीं हो, गंदगी नहीं हो, जिस प्रेम से, जिसको प्रेम पूर्वक किया जाए, स्वेच्छा से किया जाए, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। इसको एक बहुत सुंदर उदाहरण से हम समझ सकते हैं, बहुत सिंपल उदाहरण से, कि यह कहने का मतलब यह है कि हम अपने आचरण को, अपने जीवन को इतना शुद्ध रखें कि यदि कोई व्यक्ति हमारे घर में आता है तो हम अपने फर्श को इतना साफ रखें कि वो व्यक्ति को ये कहना नहीं पड़े कि आप चप्पल उतार के आओ या जूता उतार के आओ। वो व्यक्ति फर्श को देखे कि इतना साफ है, उसको अपना पैर रखने में या चप्पल रखने में उसको शर्म आनी चाहिए कि जो है अरे ये इतना साफ है, इसके ऊपर मैं कैसे रखूं। तो ये जो है हृदय से प्रचार की बात है, जीवन को अपने आचरण में शुद्धता लाने की बात है। और इस शुद्धता के आधार पर यदि आप कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं तो हम जो है अच्छी तरह से प्रचार करेंगे। और प्रचार न करके भी सिर्फ आप किसी के सामने प्रेजेंट होते हैं तो भी आप जो है बहुत कुछ प्रचार ऑटोमेटिक बिना कहे हुए कर सकते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। और ऐसा हम आप भक्तों से भी आग्रह करेंगे कि हमने अपने जीवन में आचरण में ला करके इन सब चीज़ों को ग्रहण करना है। हमें इसको किसी को सिखाने बताने की बात नहीं है। एक माता अपने घर के अंदर एक छोटे से बच्चे को, इसके ऊपर बहुत बार हमारा लोगों से डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी भगवान को जानने की पद्धति है, संबंध जोड़ने की पद्धति है, आप देखेंगे कि उसमें ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान के स्तर पर वो व्यक्ति होगा, और जब कोई बच्चा होगा छोटा, जब तक वो ज्ञान के स्तर पर नहीं होगा तब तक उसे आप ये बात नहीं बता सकते। लेकिन अपने आचरण से यदि माता पिता अपने घर के अंदर विग्रहों को रख करके, अर्चा विग्रहों को रख करके भगवान को भोग लगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो ये छोटा बच्चा बड़ा होकर ऑटोमेटिक भोग लगाएगा। आपको ये बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से भक्ति है, भक्ति इतनी आप में शुद्ध है, इतनी पवित्र है, इतनी सर्वोत्तम है कि इसको अपने आचरण में यदि थोड़ा भी हम उतार लें तो उसका जो है प्रत्यक्ष जो है लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसी बात को हम बहुत सुंदर तरीके से एक रूपक के रूप में समझाना चाहेंगे, जो कल के क्लास में हम लोगों ने श्रवण किया था कि ये जीवन जो है एक प्रवाह है। प्रवाह का अर्थ, इसको एक दृष्टांत आप लीजिए, एक रूपक लीजिए। आप जैसे मैंने अभी बताया कि पहले व्यक्ति पशु योनि से मनुष्य योनि में आता है, मनुष्य योनि से फिर जो है विप्र योनि में, फिर ब्राह्मण, उसके बाद वैष्णव। उसी प्रकार से आप सपोज इमेजिन कीजिए कि आप जा रहे हो और एक बहुत बड़ी नदी आई सामने और नदी आपको पार करना है। तो अभी हम क्या हुआ, उस नदी में बहते हुए प्रवाह यानी हम बहते हुए अपने जीवन से चले आ रहे हैं, लेकिन हमें जो है अभी तक किनारा नहीं मिला है। लास्ट श्लोक जो कल जो बताया गया था उसका आशय यही था कि उस नाव को किनारा जो है अभी हम बहते हुए आ रहे हैं, कल के श्लोक से ये आशय प्रकट होता है। और उसी प्रकार से आज हमें इस श्लोक के माध्यम से ये आशय मिलता है कि हम जो है एटलीस्ट किनारे पे लग रहे हैं, यानी कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करके हम एटलीस्ट जो है इस भाव सागर से यानी नदी के किनारे यानी कहीं किनारे के नज़दीक आ गए हैं। और भक्त हम लोग, भक्तों से मैं बताना चाहूँगा कि हम सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम गुरु के माध्यम से और चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से हमने ये सब चीज़ों को अंगीकार किया है और अब हम किनारे के स्टेज पर आ गए हैं। कल की कथा में आप सुनेंगे कि भक्ति के जो विशेष 8 पथ हैं यानी 8 रास्ते हैं वो कल के इस श्लोक में यहाँ पे व्याख्यान में आप सुनेंगे। और उन 8ों रास्ते को, 8ों चीज़ों को अपने जीवन में आत्मसात करके आप बहुत सुलभ, बहुत सरलता से भगवान से अपना संबंध स्थापित करके उस प्रेममयी सेवा से जुड़ सकते हैं। इसके साथ में हम लोगों को बहुत विशेष बात ये समझने की है कि खास करके ये जो वृंदावन है और वृंदावन धाम जो है, इस पूरे पृथ्वी पर 3 भाग पानी है और 1 भाग पृथ्वी है। इस संपूर्ण पृथ्वी कभी किसी एक राजा के हाथ में थी, वो थे राजा परीक्षित। उसके बाद में ये सब डिवाइडेशन होते होते आज स्थिति ऐसी हुई है। तो इस पृथ्वी पर ये जो 84 कोस है, वृंदावन है, वृंदावन सबसे हाईएस्ट स्थान है, सबसे हाईएस्ट लेवल है। और बहुत सौभाग्य की बात यह है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब 550 साल पहले इस धराधाम पर आए, तब हमें ये वृंदावन धाम को उन्होंने प्रकट किया, रिवील किया, और आज देखने को मिल रहा है और भक्ति को उन्होंने सुलभ किया। भक्तों, आप पूरा शास्त्र अध्ययन करके देख लें, सारे संप्रदाय से आप ज्ञान प्राप्त कर लें, आपको पता चलेगा कि चैतन्य महाप्रभु जी के आने से पहले ये वृंदावन, किसी को पता नहीं था कि वृंदावन कहाँ है और क्या होता है वहाँ पे, या भक्ति आकर के अपना यौवन रूप कैसे लेकर के भक्तों के बीच में, खास करके कलयुग के अभागे जो जीव हैं उनके ऊपर कैसे दया कर रही हैं। तो इसका हमें पूर्ण लाभ लेना चाहिए। और इस विषय में खास करके श्रीनाथाचार्य ने बहुत सुंदर ये श्लोक दिया है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तन दस्त धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण वा कल्पिता। इस श्लोक में श्रीनाथ आचार्य बता रहे हैं कि 8 बातें इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्वयं भगवान अखिल रसामृत मूर्ति ब्रजराज नंद नंदन, ये द्वारिका के कृष्ण नहीं है या और कहीं के कृष्ण नहीं है, ये देवकी नंदन, यानी देवकी नंदन यानी यशोदा नंदन, ये देवकी नंदन यशोदा नंदन, यहाँ प्रेम का जो वात्सल्य भाव है वो प्रकट हो रहा है। तो इस करुणा के अंदर भगवान जो है यहाँ पर इस धाम पर, तो गोपियों ने भगवान साथ में ये प्रेम संबंध स्थापित करके उस पथ का अनुशीलन किया। हमें भी इसी पथ का अनुशीलन करते हुए कृष्ण भावनामृत में भगवान के नाम का शुद्धता से जप करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा भगवान के साथ में संबंध स्थापित हो, ताकि हम इस जीवन में और अगले जीवन में ये शरीर छूटने के बाद भगवान के हम बहुत हृदय से प्रेममयी सेवा कर सकें। वो सेवा हमारी इसमें आगे लिख रहे हैं कि आराध्य भगवान आप हों, भगवान श्री कृष्ण आपका परम रमणी दिव्य श्री वृंदावन धाम अर्थात विलास स्थली है, उस चिन्मय वृंदावन अधास्त्री देवी ब्रजवधु गणों के द्वारा प्रकाशित अति रमणी रसमयी भक्ति की अपनी उपासना है। इस विषय में सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत महापुराण ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। आगे इस श्लोक में बताते हैं, श्रीमद् भागवतम प्रमाणामलम प्रेमापुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मत्मिदं तत्र दुरनर पर। इस उपासना से परम पुरुषार्थ शिरोमणि ब्रज प्रेम लाभ होता है। यही प्रेम अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का मत सिद्धांत है और इसी मत में अपना श्रेष्ठ आदर और विश्वास है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है इस दृष्टि से। और इसके साथ साथ में अब देखिए, सबसे पहले भगवान ने इसी बात को बल देने के लिए श्रीमद् भगवद गीता, और भगवद गीता में अभी इसी में जो श्लोक आया 18वें अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता के अंदर, सर्वधर्मानि परित्यज्य, यानी जो तथा कथित धर्म है, सो कॉल्ड धर्म है, उन सब चीजों को छोड़ करके यदि हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो हमें जो है इस भक्ति का चांस है और इस सर्वोत्तम भक्ति हम भगवान की कृष्णमय जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और इसी को और प्रगाढ़ रूप में भगवान ने हृदयेषु शब्द मैंने यूज किया, इसको श्रीमद् भागवतम जो दिया है प्रभुपाद जी ने, उसमें प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में ही देखें तो धर्म प्रोजित कहतो परमे निर्वस्ति निर्णाम सताम। निर्णाम सताम यानी ये शास्त्रों का, श्रीमद् भागवत का निर्णय है कि इस ग्रंथ को, इसके ज्ञान को हम हृदय में उतारें, हृदय के द्वारा इसको ग्रहण करें। और श्रीमद् भगवत गीता से इसकी शुरुआत होती है। तो ये एक टिप्स है हमारे लिए, एक जो है ये डायरेक्ट भगवान एक टिप्स दे रहे हैं कि हमें पहले उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। और शरण करने का आगे कल के श्लोक में बताया जाएगा कि प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आना, भक्तों के संग में रहना, 4 नियम का पालन करना, 16 माला का जप करना, ये सब विधि इसको कैसे हमें पालन करना है वो बताया जा रहा है। पर यहाँ पे भगवान ने भगवद्गीता के माध्यम से सारे 700 श्लोकों में 68 नंबर श्लोक में ये व्याख्या करके बता रहे हैं कि हमें सबसे पहले उनको समर्पित होना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए। उसके बाद श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में बता रहे हैं कि हमें ये श्रीमद् भागवत का निर्णय है कि भगवान से प्रेममयी संबंध स्थापित करने के लिए उन्हें समर्पित होना चाहिए। और इसको समर्पित होने के लिए आगे चल करके चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस पूरे संपूर्ण धराधाम को 84 कोष यानी वृंदावन धाम को प्रकट करके इसको और भी ज़्यादा हमें आकर्षित कर दिया और ये बताया कि हम निश्चित रूप से यदि हम इस धाम में रह करके प्रामाणिक सोर्स से बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में यदि हम भगवान के नाम का जप और कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमें निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण का संबंध स्थापित होगा, उनसे प्रेममयी सेवा हमारी फलीभूत होगी और इस प्रकार से हम भगवान को संपन्न करके इस जीवन को, जो जीवन हमारा शेष बचा है वह जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। और जीवन के बारे में तो आचार्यों ने इतना तक कह दिया है कि ओस की एक बूंद जो है अगर पत्ते पे गिरती है तो उस ओस की बूंद का जितना समय होता है उतना ही हमारा जीवन है। कई सारे दृष्टांत उदाहरण है, यानी एक निमेश भी हमारे पास समय नहीं है इस जीवन को, और हम 24 घंटे देखते हैं कि यह जीवन हमारा एक एक निमेश में यानी एक पलक गिरने और झुकने में समाप्त होता है। तो इसको हम लोगों को बहुत गहराई से जो है ग्रहण करना चाहिए। जिस परिस्थिति में जहाँ पर भी हैं, भगवान ने बिना किसी उसके जो है ये हमें सुलभ किया है, और इस सुलभता को हम इसका लाभ उठा करके सबसे पहले हम भगवद गीता का अध्ययन ठीक से करें, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें, उसके बाद चैतन्य चरितामृत को करें, और बृहद भागवतामृत में इसका विशेष वर्णन है जिसकी सारी कथा हमारे पूर्व आचार्य और जितने भी यहाँ पे वरिष्ठ वैष्णव हैं वो लोग वर्णन करते हैं। तो इसी अनुग्रह और अनुशीलता के साथ में मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि इन शब्दों के साथ हम इसको विराम देते हैं और हम सबसे आग्रह करेंगे कि हम लोग अपनी भक्ति को हृदय सु करके यानी हृदय में उदार करके इसको गंभीरता से करें और सबसे पहले इसको अपने आचरण के द्वारा करें। हरे कृष्णा।